पाठ 38 अध्याय 28 व्यवस्था विवरण अध्याय 28 व्यवस्था विवरण के इस विशेष चार अध्याय खंड का मध्य बिंदु है जो अध्याय 26 से 30 तक चलता है। ये अध्याय इब्रानी ऋषियों और रब्बियों द्वारा सबसे अधिक अध्ययन और पूजनीय है क्योंकि इन अंशों का अर्थ और प्रभाव एक साथ सीधा और गहरा और रहस्यमय है। हम यहाँ कुछ गंभीर समय बिताने जा रहे हैं, इसलिए आराम से बैठिए। हम उन अंशों का भी सामना करने जा रहे हैं जिन्हें इसराइलियों ने निस्संदेह अपने विरुद्ध सबसे गंभीर खतरे के रूप में देखा था यदि वे परमेश्वर और वाचा की शर्तों की अवज्ञा करते, जिसे मिस्र से पलायन की इस दूसरी पीढ़ी ने अपनी शपथों, घोषणाओं और अनुष्ठान समारोहों के साथ जोरदार तरीके से स्वीकार किया था। परमेश्वर की ओर से इन धमकियों को आम तौर पर श्राप के रूप में लेबल किया जाता है। बेशक यहोवा की न्याय प्रणाली की प्रकृति के अनुसार अवज्ञा करने वालों और यहोवा से दूर जाने वालों के लिए श्रापों के अलावा उन लोगों के लिए आशीर्वाद भी हैं जो परमेश्वर के करीब रहते हैं और अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से उनके प्रति अपना भरोसा और प्रेम प्रदर्शित करते हैं। चूंकि श्राप आज हम जो अध्ययन करेंगे उसके केंद्र में है, इससे पहले कि हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 एक बहुत लंबा अध्याय को पाए हैं, मैं कुछ मिनट लेना चाहूंगा यह प्रदर्शित करने के लिए कि गलातियों के तीसरे अध्याय में पौलुस ने मसीह के हमारे उसके शिष्यों के लिए श्राप बनने के बारे में जो कहा उसका यह अर्थ नहीं है कि अब किसी तरह से प्रभु के साथ एक तरफा एकल आयामी रिश्ता है जिसके द्वारा सभी विश्वासी परमेश्वर से उसकी सहायता और समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। और इस प्रकार जब हम पाप करते हैं और विद्रोह करते हैं और उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो हम कभी भी उसके द्वारा किसी भी प्रकार के अनुशासन के अधीन नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। व्यवस्था के अभिशाप वाक्यांश से पौलुस का क्या तात्पर्य है और चूंकि मसीह हमारे लिए अभिशाप बन गया है इसलिए हम अब इसके अधीन नहीं हैं। सबसे पहले आइए गलातियों में संत पौलुस के उस संक्षिप्त कथन को पढ़ें, गलातियों 3:10। क्योंकि जो कोई तोरह की आज्ञाओं के व्यवस्था पालन पर निर्भर रहता है वह शापित रहता है, क्योंकि लिखा है शापित है वह हर कोई जो तोरह में लिखी हर बात का पालन नहीं करता। 11, अब यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति विधिवाद के द्वारा परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित नहीं घोषित किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्मी है भरोसा करके और विश्वास योग्य रहकर जीवन प्राप्त करेगा। 12, इसके अलावा विधिवाद भरोसा करने और वफादार होने पर आधारित नहीं है बल्कि जो कोई भी इन चीजों को करेगा वह जीवन प्राप्त करेगा। 13, मसीहा ने हमारे लिए शापित होकर तोरह में दिए गए श्राप से मुक्ति दिलाई, क्योंकि तनाख कहता है जो कोई भी खंभे से लटका हुआ है वह अंतर्गत आता है। चूंकि हम व्यवस्था विवरण के अध्याय 27 में उन लोगों पर श्रापों की सूची देख रहे हैं जो परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, हमें सावधान रहना होगा कि हम श्रापों अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के विभिन्न कृत्यों के लिए निर्धारित दंड की सूची को कानून के अभिशाप वाक्यांश के साथ भ्रमित न करें। मुझे फिर से कहना है, हमारे पास बुराई करने के लिए श्रापों बहुवचन की एक पूरी श्रृंखला है, अभिशाप एकवचन के विरुद्ध और उसके विरुद्ध, और यह अभिशापों के बीच की यह गलत फहमी है और अभिशाप जिसके कारण इतने सारे ईसाई खुशी से यह उम्मीद करते हुए घूम रहे हैं चाहे वे कुछ भी करें उन्हें हमारे परमेश्वर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि खा हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह हमें हमारे कार्यों के लिए अनुशासित नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कभी भी किसी आस्तिक को पाप करने के लिए दंडित नहीं करेगा। मैं परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण मिलने वाले विभिन्न श्रापों पर चर्चा करने में समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं जिसका हमने अध्ययन किया है, क्योंकि यह एक लंबी सूची है और वे आम तौर पर स्वव्याख्यात्मक हैं। लेकिन क्या है व्यवस्था का अभिश्राप जिसके बारे में पौलुस गलातियों में बात कर रहा था? मुझे लगता है कि इस अंतर को देखने का सबसे अच्छा तरीका बाइबल की कुछ पदों की जांच करना है जिनमें इसका विभिन्न संदर्भों में अभिश्राप शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला यशायाह 24 का एक देखो, एदोनाई पृथ्वी को उजाड़ करके नाश कर देगा, वह उसकी सतह को उलट पुलट कर देगा और उस पर रहने वालों को तितर बितर कर देगा, और प्रजा के लोग याजक के समान होंगे, दास अपने स्वामी के समान, दासी अपनी स्वामिनी के समान, खरीदने वाला बेचने वाले के समान, उधार देने वाला उधार लेने वाले के समान, और ऋणी साहूकार के समान हो जाएगा। पृथ्वी पूर्णतः सूनी पूर्णतः उजारा हो जाएगी, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझाएगा, और पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने निवासियों के कारण दूषित हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधियों को भंग किया तथा सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को श्राप निगल जाएगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। यही कारण है कि वहां रहने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं और बचे हुए लोग हम रह जाते हैं। यहां ऐसा क्यों कहा गया है कि एक अभिश्राप, एक वचन भूमि को निगल रहा है, जबकि इसके बजाय यह कहा गया है कि परमेश्वर केवल बड़ी संख्या में श्राप, बहुवचन या दंड लागू कर रहा है जो इसराइल पर लगाए गए कई कानूनों को तोड़ने पर आते हैं? क्या यह सच है कि परमेश्वर सिर्फ एक विशेष व्यवस्था का आह्वान कर रहा है? नहीं, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अब हम यिर्मयाह 42 की ओर चलते हैं। यिर्मयाह 42 का 15, तब तो हे यहूदा के बचे हुए लोगों, यहोवा का वचन सुनो। इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यदि तुम वास्तव में मिस्र में प्रवेश करने के लिए अपना मन लगाओ और वहीं बसने जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वह तुम्हें वहीं मिस्र देश में जा पकड़ेगी, और जिस अकाल से तुम चिंतित रहते हो वह मिस्र देश में तुम्हारे पीछे लगा रहेगा और तुम वहीं मर जाओगे। अतः वे सब जो मिस्र देश में जा बसने के लिए अपना मन लगाए, वे तलवार, अकाल और मरी से मरेंगे, और उस विपत्ति से जो मैं उन पर डालने को हूं उससे उनको बचाने वाला और शरण देने वाला कोई ना होगा। 18, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जैसे मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़की है, वैसे ही जब तुम मिस्र में प्रवेश करोगे तब मेरा कोप तुम्हारे ऊपर भड़केगा और तुम श्राप का पात्र, श्राप और निंदा का पात्र बनोगे, और हम स्थान को फिर कभी ना देखोगे। मैंने यिर्मयाह का अनुवाद उपयोग करना चुना क्योंकि यह हमारे सामान्य भ्रष्ट से अधिक शाब्दिक है। सीजेबी में शाब्दिक अनुवाद के बजाय विद्वानों द्वारा गतिशील अनुवाद का उपयोग किया जाता है, शब्द दर शब्द अनुवाद। एक गतिशील अनुवाद आधुनिक शब्दों में वही कहने का प्रयास करता है जो लेखक ने निष्कर्ष निकाला है कि उन प्राचीन इब्रानी शब्दों का अर्थ था। इसलिए अगर हम अपने सीजेबी को देखें तो हम देखेंगे कि यिर्मयाह 42 का 18 में इब्रानी शब्द केलालाह का अनुवाद श्राप के रूप में करने के स्थान पर, जो इसका सामान्य अर्थ है, इसके बजाय यह कहता है निंदा की वस्तु, जो कि एक अभिश्राप का मतलब है। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति अभिश्राप के अंतर्गत आया है, परिणाम स्वरूप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह, वह है जो परमेश्वर की निंदा का पात्र है। आइए एक और पद जोड़ते हैं जो हमें द ग्रेट शब्द को समझने के लिए एक और संदर्भ देता है। श्राप का अर्थ है, और हम इसे नीति वचन 3:33 में पाते हैं। नीति वचन 3:33, एदोनाई का श्राप दुष्टों के घर पर है परंतु धर्मियों के घर को आशीष देता है। अतः एक बार फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का श्राप विभिन्न श्रापों से भिन्न है। दंड जो किसी को उसके कुछ नियमों और आदेशों को तोड़ने के लिए मिलता है, बल्कि यह शब्द ईश्वर के श्राप का अर्थ है, ईश्वर की निंदा। यदि कोई इब्रानी व्यक्ति कुछ चुराता है तो उसे दंडित किया जाता है। व्यवस्था में सूचीबद्ध उचित निर्दिष्ट श्रापों में से एक के अंतर्गत, इसलिए यदि उसने किसी भाई को चोट पहुंचाई है और इस प्रकार प्रभु के साथ संगति तोड़ दी है, व्यवस्था कहता है कि उसे अपनी मालिक की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, साथ ही दंड के रूप में थोरा और जोरें, साथ ही परमेश्वर के लिए मंदिर की वेदी पर प्रायश्चित का बलिदान करें। ध्यान दें कि इस चोर की निंदा नहीं की गई, क्योंकि बाइबल में हमारे जैसे ही समाज में
निंदा का तकनीकी अर्थ है मृत्युदंड, जब तक कि यह सिर्फ काव्यात्मक रूप में या रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जब बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति की निंदा की गई है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए, और उस मृत्युदंड का मतलब शारीरिक मृत्यु भी हो सकता है, या यह इसका अर्थ आध्यात्मिक मृत्यु है, अथवा इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं। अब व्यवस्था विवरण 30 से एक पद सुनिए, जिसका अध्ययन हम कुछ सप्ताहों में करेंगे, जो इस प्रकार शुरू होता है, न केवल अभिश्राप शब्द के अर्थ पर बल्कि आशीर्वाद, क्योंकि जिस तरह श्रापों की सूची बनाना और श्राप एक ही बात नहीं है, उसी तरह श्रापों की सूची बनाना भी एक ही बात नहीं है। आशीर्वाद की सूची बनाना और आशीर्वाद एक ही बात नहीं है।
व्यवस्था विवरण 30:15, देखो मैं आज तुम्हें एक ओर तो जीवन और भलाई देता हूं और दूसरी ओर तुम्हें मृत्यु और बुराई प्रदान करता हूं। 16, क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसके मार्गों पर चलना और उसके नियमों और नियमों का पालन करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम जीवित रहोगे और तुम्हारी संख्या बढ़ेगी, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जिसे तुम अधिकार में लेने के लिए प्रवेश कर रहे हो। यदि तुम सुनने से इनकार करते हो तो तुम अन्य देवताओं के सामने दंडवत करने और उनकी सेवा करने के लिए विवश हो जाते हो। 18, मैं आज तुम्हें घोषणा कर रहा हूं कि तुम निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे, तुम उस देश में लंबे समय तक नहीं रह पाओगे जिसके अधिकार में तुम प्रवेश करने और यर्दन को पार कर रहे हो। यह अंश अनिवार्य रूप से परिभाषित करता है कि परमेश्वर का अर्थ व्यवस्था के आशीर्वाद और अभिशाप से क्या है। व्यवस्था का आशीर्वाद जीवन और भलाई है, व्यवस्था का अभिशाप मृत्यु और बुराई है, जीवन और अच्छाई बनाम मृत्यु और बुराई। यहूदियों के बीच यह कहना आम बात है कि तोरह जीवन है। इसका मतलब है कि तोरह का पालन करने से वह जीवन मिलता है जो परमेश्वर उन सभी को देना चाहता है जो उस पर भरोसा करते हैं। इसके विपरीत तोरह का पालन न करने से मृत्यु आती है, जो जीवन के विपरीत है, क्योंकि इसका मतलब है कि उल्लंघन करने वाला उस पर भरोसा नहीं करता। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने अपने अनुयायियों पर से परमेश्वर के दंड को नहीं हटाया, उन्होंने केवल अनंत मृत्यु की निंदा को हटा दिया। मसीह ने निश्चित रूप से हमारे लिए शारीरिक मृत्यु को समाप्त नहीं किया, कम से कम वर्तमान दुनिया में, जैसा कि स्वयं स्पष्ट है, जैसा कि हम तनाख पुराने नियम में देखते हैं कि प्रभु के विरुद्ध किए गए अधिकांश पापों के लिए प्रत्येक के साथ किसी प्रकार की सजा झुरी हुई थी, श्राप, लेकिन उनमें से केवल मुट्ठी भर पापों ने कभी मृत्युदंड श्राप का आह्वान किया। यही बात यीशु के आधुनिक शिष्यों के साथ भी है। आम तौर पर हम प्रभु के विरुद्ध पाप कर सकते हैं और करेंगे, और कभी कभी हम अपने ऊपर कुछ दिव्य दंडों के रूप में अनुशासन के परमेश्वर के हाथ का अनुभव करेंगे, हालांकि हम उन पापों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर से अनंत अलगाव से बच जाते हैं जिसके सभी मनुष्य हकदार हैं। यीशु के शिष्यों को अनंत मृत्युदंड आध्यात्मिक निंदा परमेश्वर से स्थाई अलगाव अभिशाप से बचाया जाता है। व्यवस्था विवरण में मूसा की वाचा के द्वारा इज़राइल के 12 गोत्रों को जो विकल्प दिया गया है, और ठीक वैसा ही विकल्प जो हमारे मसीहा यीशु में नवीनीकृत वाचा द्वारा दिया गया है, वह आशीष या श्राप के बीच है, या जैसा कि बाइबल ने हमें दिखाया है, जीवन की आशीष और मृत्यु के श्राप के बीच है। इस तैयारी के साथ आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 को एक साथ पढ़ें।
व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पूरा पढ़ें। अध्याय 28 का पहला शब्द है अगर। अगर आध्यात्मिक प्रभाव के मामले में बाइबल में शायद सबसे बड़ा शब्द है। प्रस्ताव यह है कि अगर इसराइल वाचा की शर्तों का पालन करेगा तो परमेश्वर इसराइल पर अपना आशीर्वाद बरसाएगा। मैंने पहले भी उल्लेख किया है, जैसा कि अधिकांश बाइबल शिक्षकों ने सिखाया है, कि मूसा की वाचा को सशर्त वाचा कहा जाता है। इसकी तुलना अब्राहम की वाचा से की जा सकती है जो बिना शर्त की वाचा थी,
जैसा कि संत पौलुस ने विस्तार से समझाया। बिना शर्त वाचा, विशेष रूप से अब्राहम वाचा को देखने का एक अच्छा तरीका यह है कि यह पूरी तरह से एक वादे से बनी होती है। अब्राहम के साथ परमेश्वर द्वारा की गई वाचा इस बात पर आधारित नहीं थी कि अगर अब्राहम कुछ करेगा तो परमेश्वर अपना वादा निभाकर जवाब देगा, बल्कि यह था कि परमेश्वर ने अब्राहम से कई सारी चीजों का वादा किया था, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम से पूछा था कि क्या वह इन चीजों को पाना चाहेगा। यह सभी चीजें आशीर्वाद थी और अब्राहम ने जवाब दिया हां। अब्राहमिक वाचा को सबसे आम तौर पर एक तरफा वाचा के रूप में माना जाता है। यह ईश्वर से मनुष्य के लिए एक तरफा सौदा है जिसमें ईश्वर सब कुछ करता है और बदले में मनुष्य से कुछ भी नहीं मांगता। इसलिए विद्वान आमतौर पर मोज़ेक वाचा को द्विपक्षीय के रूप में वर्णित करते हैं जिसमें यह ईश्वर से मनुष्य के लिए है लेकिन बदले में ईश्वर कुछ की अपेक्षा करता है। दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति दायित्व है। मैं उस प्याज को थोड़ा पतला काटना चाहता हूं क्योंकि मैं सामान्यतः उन विवरणों से सहमत हूं, लेकिन हम माउंट पर किए गए वाचा की वास्तविक प्रकृति के बारे में गलत विचार भी प्राप्त कर सकते हैं। सिनाई में मूसा को मध्यस्थ के रूप में रखा गया था और बस यही सशर्त का अर्थ है। अब्राहमिक वाचा, मुझे लगता है कि हम सभी सहमत होंगे, परमेश्वर की कृपा पर आधारित है। परमेश्वर ने इसे अब्राहम को एक मुफ्त उपहार के रूप में दिया था। जैसे उन्होंने मानव जाति को एक मुफ्त उपहार के रूप में मुक्ति दी थी, हमारा कर्तव्य है कि हम इसे स्वीकार करें। हालांकि यही बात मूसा की वाचा के बारे में भी सच है। मैं समझाता हूं, वाचा का एक बहुत अच्छा सादृश्य एक अनुबंध है। यह सटीक नहीं है लेकिन चर्चा के लिए काफी करीब है। हम सभी अनुबंधों को समझते हैं। जब हम घर या कार खरीदते हैं तो हमारे पास वे होते हैं। कभी कभी हमारे पास अपने नियोक्ताओं के साथ अनुबंध होते हैं, खासकर मनोरंजन या खेल के मैदानों में। और विचार यह है कि अनुबंध अनिवार्य रूप से पारस्परिक दायित्वों की एक श्रृंखला है। यदि एक पक्ष अपने एक या अधिक संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो आमतौर पर परिणाम यह होता है कि अदालतें शामिल होती हैं। शायद ही कभी अनुबंध को केवल एक पक्ष या दूसरे द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के दंड के रूप में रद्द कर दिया जाता है। मुद्दा यह है, मूसा की वाचा इज़राइल के लिए एक उपहार थी, ईश्वरीय कृपा का एक कार्य। एक बार जब इज़राइल ने वाचा स्वीकार कर ली तो वाचा के उल्लंघन का मतलब यह नहीं था कि वाचा रद्द हो गई। इसका मतलब केवल यह था कि कुछ दंड लागू हुए, जैसा कि अधिकांश अनुबंधों में होता है। मूलतः प्रभु द्वारा दी गई आशीषों के बदले में इज़राइल ने घोषणा की कि यदि वे अपने वादे को पूरा करने में असफल रहे तो वे कुछ परिणाम, जिन्हें श्राप कहा जाता है, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि लगभग सभी अनुबंधों की तरह ही मोज़ेक वाचा को रद्द नहीं किया गया और उसे कचरे में नहीं फेंका गया क्योंकि शर्तें तोड़ी गई थीं, बल्कि अनुबंध में लिखे गए कुछ दंडों को सक्रिय किया गया। स्वाभाविक रूप से दंड सख्ती से इज़राइल के पक्ष में थे क्योंकि ईश्वर कभी नहीं बदलता या अपने वचन से पीछे नहीं हटता। कई साल पहले मैंने अपने परिवार के लिए एक घर बनवाया था और अनुबंध के हिस्से के रूप में मैंने एक निश्चित समापन तिथि पर बातचीत की थी। यदि ठेकेदार ने तय तिथि से पहले घर पूरा कर लिया तो उन्हें नियत तिथि से पहले इसे पूरा करने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक निश्चित डॉलर की राशि मिलती थी, उन्हें एक आशीर्वाद मिलता था। हालांकि यदि वे नियत तिथि तक काम पूरा करने में विफल रहे तो उन्हें नियत तिथि के बाद हर दिन के लिए एक समान राशि का जुर्माना लगाया गया, एक अभिशाप। लेकिन भले ही वे नियत तिथि तक काम पूरा करने में विफल रहे, लेकिन अनुबंध रद्द नहीं हुआ। यह सिर्फ इतना है कि एक अंतर्निहित अभिशाप लागू किया गया था यदि उन्होंने वह नहीं किया जो उन्होंने करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अन्य प्रकार की स्थितियों के लिए अन्य दंड भी बनाए गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अनुबंध को रद्द नहीं किया। बात यह है कि मूसा की वाचा इस तरह से काम नहीं करती थी कि अगर इज़राइल परमेश्वर के श्रापों को अपने ऊपर ले आए, ये सभी वाचा में लिखी शर्तें थीं, कोई छोटा प्रिंट नहीं और कोई आश्चर्य नहीं, तो वाचा रद्द हो जाती थी।
यह केवल वह था जिसके द्वारा शर्तों का पालन करने के माध्यम से इज़राइल को आशीर्वाद दिया जाता था। इसके बजाय शर्तों का उल्लंघन करने के लिए परिणामी श्राप होते। वाचा बरकरार रही, वाचा रद्द नहीं हुई, क्योंकि इज़राइल को इसे बरकरार रखने के लिए कुछ भी नहीं करना था। बल्कि एक बार जब वाचा के दिव्य उपहार को इज़राइल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, पूरी मंडली इस पर सहमत हो गई, जैसे अब्राहम ने अपने साथ वाचा को अनुमोदित किया था, तो जो कुछ बचा था वह समय के साथ इसकी शर्तों को पूरा करना था। अब्राहम और मूसा की दो वाचाओं के बीच अंतर यह था कि अब्राहम की वाचा में कोई दंड, कोई श्राप नहीं था, क्योंकि अब्राहम के पास कोई दायित्व नहीं था, लेकिन मूसा की वाचा में दंड, श्राप थे, क्योंकि इज़राइल के पास दायित्व थे। मूसा की वाचा जीवित और अच्छी है। वास्तव में मसीह में नई वाचा मूसा की वाचा है, जिसे नवीनीकृत किया गया है और हमारे मन, हृदय पर लिखा गया है, जिसमें यीशु उन लोगों के लिए शुद्धिकरण और प्रायश्चित दोनों का स्रोत है जो इसकी शर्तों को स्वीकार करते हैं, और यीशु के साथ नवीनीकृत वाचा के मध्यस्थ के रूप में भी। जिस तरह से एक इसराइली को दुर्व्यवहार के लिए परमेश्वर की कृपा से स्थायी रूप से दूर नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि यह उस तरह का था जो अनिवार्य रूप से परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास और समर्पण की कमी को साबित करता है, वैसे ही यह भी है कि कोई भी विश्वासी दुर्व्यवहार के लिए परमेश्वर की कृपा से स्थायी रूप से दूर नहीं है सामान्य रूप से। लेकिन इस बारे में सोचें, मसीहा की वाचा के तहत हमारे पास दायित्व है ना। अधिकांश ईसाई अभी भी 10 आज्ञाओं का पालन करने के हमारे कर्तव्य को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे सिर पर 10 आज्ञाओं से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि केवल यही सब है, भले ही मैं ऐसा मानता हूं। तथ्य यह है कि हमारे पास प्रत्येक विश्वासी के लिए 10 ठोस दायित्व हैं, जिनमें से प्रत्येक स्पष्ट रूप से का उल्लंघन किया जा सकता है। अतः हमारी नई वाचा में दायित्व है, और इसलिए यह अब्राहम की वाचा के अनुरूप नहीं है। इस पर विचार करें, यदि जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, मूसा की वाचा ने अब्राहम की वाचा का स्थान ले लिया और फिर नई वाचा आई और उसने मूसा की वाचा का स्थान ले लिया, तो कोई अन्य भविष्य की वाचा जो वर्तमान में हमारे लिए अज्ञात है, नई वाचा का स्थान क्यों नहीं ले सकती और उसका स्थान क्यों नहीं ले सकती?
निश्चित रूप से इब्रानी लोगों को अब्राहमिक वाचा को अप्रचलित करने की परमेश्वर की किसी योजना के बारे में पता नहीं था, न ही उन्हें मूसा की वाचा को अप्रचलित करने की किसी योजना के बारे में पता था।
उन्हें पता था कि वर्तमान में चल रही वाचा को नवीनीकृत, रूपांतरित और उनके दिलों में डाला जाना था, लेकिन बस इतना ही। चाहे ऐसा होना चाहिए था या नहीं, यीशु में नई वाचा यहूदियों के सबसे विद्वान लोगों के लिए भी एक अप्रिय आश्चर्य की तरह लग रही थी।
इसलिए यदि हम इस गलत धारणा को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने अतीत में कई वाचाएं बनाई और समय समय पर अचानक अपने लोगों पर एक नई वाचा बांधी जो पिछली वाचा को रद्द कर देती है, तो हमें इतना भरोसा क्यों होना चाहिए कि यहोवा निकट भविष्य में अचानक हमारे लिए एक और भी नई वाचा नहीं बांधेगा जो मसीह में नई वाचा को अप्रचलित कर देगी? जो लोग ऐसी बात को मान्य करेंगे, उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि ऐसा करना ईश्वर के सिद्ध पैटर्न के भीतर होगा। वैसे इस्लाम के अनुसार यही हुआ है। वे कहते हैं कि वे यीशु का सम्मान करते हैं, लेकिन मोहम्मद ईश्वर की ओर से ईसा से भी नए संदेश के वाहक थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईसा का संदेश झूठा था। यह सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने अब ईसा को खारिज कर दिया है और अपने पैगंबर ईसा की जगह मोहम्मद को रख दिया है। मॉर्मनवाद का कहना है कि उनके पास उनके पैगंबर जोसेफ स्मिथ द्वारा लाए गए नए नियम से भी नई वाचा है, जिसे मॉर्मन की पुस्तक कहा जाता है, और यह नए नियम का स्थान लेती है। वही ईसाई जो दावा करते हैं कि ईश्वर वाचाएं बनाता है, उन्हें हमेशा के लिए घोषित करता है और फिर उन्हें नए नियमों से बदल देता है, उन्हें मॉर्मन के इस विश्वास पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए कि ईश्वर ने जोसेफ स्मिथ के माध्यम से ठीक यही किया था? इस अलंकारिक प्रश्न का उत्तर यह है कि परमेश्वर हम पर भविष्य में कोई ऐसा वाचा नहीं लगाएगा जो उसके पिछले वाचाओं को रद्द कर दे। क्योंकि वह हमेशा के लिए वाचाएं नहीं बनाता और फिर उन्हें रद्द कर देता है।
यह उसका तरीका नहीं है। और नई वाचा ने न तो मोजेक वाचा को और न ही अब्राहमिक वाचा को रद्द किया है, जैसा कि प्रतिस्थापन धर्मशास्त्र बताता है।
अगली बात जो हम पद एक में देखते हैं वह यह है कि मूसा के श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण इब्रानी शब्द शेमा का उपयोग किया गया है। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं यदि आप सुनते हैं, इसका अर्थ है यदि आप शेमा। मैं आपको याद दिला दूं कि शेमा का अर्थ है सुनना और आज्ञा पालन करना। इसका अर्थ केवल सुनना नहीं है, क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी में सुनना और सुनना शब्द निष्क्रिय है। हम जहां हैं वहीं बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं या सुन सकते हैं, और कार्रवाई करने के लिए कोई बाध्यता महसूस नहीं कर सकते। शेमा का अर्थ है कि ईश्वर जो कहना चाहता है उसे सुनना और फिर उसे करना। मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता कि मैं जो आपको बता रहा हूं वह रूपक नहीं है, बल्कि यह इब्रानी शेमा का अर्थ है। और प्रभु कहते हैं कि यदि इज़राइल उनकी आज्ञा का पालन करेगा और उनकी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करेगा तो प्रभु इज़राइल को सबसे बड़ा विशेषाधिकार देंगे, पृथ्वी पर बाकी लोगों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों से अधिक, जिनसे वह भी प्यार करते हैं। वह कहते हैं कि यदि इज़राइल अपना हिस्सा निभाएगा और उनकी आज्ञा का पालन करेगा तो वह इज़राइल को अपने हिस्से के रूप में ये आशीर्वाद देने का वादा करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि यह नहीं कहा गया है कि यदि इज़राइल परमेश्वर की अवज्ञा करता है तो वाचा स्वयं रद्द हो जाती है। अध्याय 28 में 6 आशीर्वाद हैं जो समृद्धि और उर्वरता पर केंद्रित है। समृद्धि और उर्वरता जीवन और अच्छी चीजों के केंद्र में है। पद 3 कहता है कि वाचा के प्रति वफादार होने से इज़राइल शहर और देहात में आशीर्वादित होगा, इब्रानी में बारूक। इसे विद्वान मेरिज्म कहते हैं, जो एक बड़ा शब्द है जो केवल इब्रानी व्याकरण संरचना को इंगित करता है, जिसे यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि दिए गए दो चरम सीमाओं के बीच की हर चीज शामिल है। तो विचार यह है कि चाहे वह सबसे बड़े, सबसे परिष्कृत और सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में हो या देश के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में, सबसे छोटे सरल गांवों में और बीच में सब कुछ, इज़राइल अपनी संपूर्णता में ईश्वर के आशीर्वाद के प्राप्तकर्ता होंगे यदि वे उनके नियमों और आदेशों का पालन करते हैं। इसके बाद पद 4 में 3 गुना आशीर्वाद के रूप में जाना जाता है। विचार यह है कि हर तरह का जीवन जो अच्छा और उपयोगी है और इब्रानियों द्वारा उपयोग के लिए अनुगत है, उसे इज़राइल में आशीर्वाद दिया जाएगा। मानव जीवन, पालतू पशु जीवन और पौधे जीवन। इस पद में आमतौर पर मवेशियों के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द बेहेमाह है और इसका अर्थ है पालतू बनाए जाने के लिए उपयुक्त सभी जानवर, सिर्फ गाय नहीं। आमतौर पर यह अधिक विशेष रूप से, लेकिन हर मामले में नहीं, उन जानवरों को संदर्भित करता है जो भोजन के लिए या बलि के लिए या दोनों के लिए उपयुक्त हैं। यह इंगित करने के लिए एक अच्छी जगह है कि बाइबल आमतौर पर और सही ढंग से 3 गुना आशीर्वाद का अनुवाद गर्भ, मवेशियों और भूमि, जिसका अर्थ है पृथ्वी या मिट्टी के फल के रूप में करती है। मुझे लगता है कि एक बेहतर अनुवाद गर्भ, मवेशियों और भूमि का प्रसव है, क्योंकि अक्सर हम फल शब्द का मतलब कुछ अच्छा मान लेते हैं। वास्तव में इब्रानी पेरी जरूरी नहीं कि फल, जिसका अर्थ है कि माता पिता मानव या पशु या पौधे क्या पैदा करते हैं, को अच्छी गुणवत्ता या मूल्य का बना दे, लेकिन इस मामले में पेरी फल इज़राइल के लोगों, जानवरों और भूमि से जो परिणाम मिलता है वह प्रभु की आज्ञाकारिता के आधार पर धन्य होगा। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए पद 5 में कहा गया है कि भूमि के धन्य फलों के परिणाम स्वरूप उपज को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन भी धन्य हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गूंधने के कटोरे भी धन्य हो जाएंगे, हमेशा रोटी का आटा बनाने के लिए भरपूर अनाज होने से। तो कुल मिलाकर विचार भोजन की प्रचुरता है। पद 6 वास्तव में एक इब्रानी मुहावरा है। यह कहता है कि तुम्हारा आना और जाना धन्य होगा। यह वास्तव में एक मुहावरा है जिसका उपयोग सैन्य गतिविधि को दर्शाने के लिए किया जाता था। सबसे शाब्दिक अर्थ में यह प्रवेश करने और बाहर जाने के विचार को व्यक्त करता है, लेकिन इसके मुहावरेदार अर्थ में यह युद्ध में जाने, जीत हासिल करने और सुरक्षित घर वापस आने की बात करता है। तो बेशक यह सीधे पद 7 से जुड़ता है कि कैसे यहोवा इसराइल की सेना के आगे चलेगा और युद्ध शुरू होने से पहले ही इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ जीत हासिल करेगा। और यह एक अन्य इब्रानी अभिव्यक्ति में व्यक्त किया गया है कि कैसे एक दुश्मन सेना एक अच्छे संगठित मार्चिंग कॉलम एक ही सरक से में आएगी, लेकिन यह घबराहट में सभी दिशाओं में भाग जाएगी, 7 सड़कों से भागे। 7 का मतलब शाब्दिक 7 नहीं है, इसका मतलब बस हर संभव तरीके से है।
पद 8 में कहा गया है कि प्रभु खलिहानों को फसल से भर देंगे और इसराइलियों के सभी कार्यों को आशीर्वाद देंगे। विचार यह है कि किसी का श्रम, चाहे वह कुछ भी हो, उत्पादक होगा और जो कुछ भी वह उत्पादन करने की कोशिश कर रहा है वह अच्छा होगा।
फिर भी इसराइल के लिए रखे गए सभी अद्भुत आशीर्वादों के बारे में मूसा के उपदेश के बीच में वह प्रभाव के लिए रुकता है। वह सभी अद्भुत आशीर्वादों का नाम लेना बंद कर देता है और इसराइल को याद दिलाता है इसके लिए आवश्यक शर्तें, और शर्त प्रभु इसराइल को अपना पवित्र लोग घोषित करेगा यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। चूंकि मूसा ने अपने सामने खरे लोगों को याद दिलाया था, इसलिए मुझे आप में से जो लोग वहां उपस्थित हैं उन्हें याद दिलाने की अनुमति दीजिए। मेरे सामने यह बात थी कि यह यीशु के पहाड़ी उपदेश से सीधा समानांतर और संबद्ध है। मैं कुछ समय पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यदि आप इस समानता से सहज और परिचित हो सकते हैं तो आपके पास एक सबसे उपयोगी उपकरण होगा जिसके द्वारा आप अपने परिवार और दोस्तों को दिखा सकते हैं कि तोरह और नए नियम के लेखन आपस में कितने जुड़े हुए हैं। अब मत्ती 5:1 पर आते हैं और मैं इस आनंददायक और आंखें खोलने वाले नमूने को प्रदर्शित करता हूं कि हम बस यहां व्यवस्था विवरण में पर हैं जिसके द्वारा हमें आशीर्वाद की एक सूची मिलती है। वाचा द्वारा बाधित मध्यस्थ, व्यवस्था विवरण में मूसा, मत्ती में यीशु, अपने श्रोताओं को यह याद दिलाने के लिए कि वह जो आशीर्वाद दे रहा है उसमें एक चेतावनी है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। मत्ती 5:1-20 पर हैं। दोनों मामलों में ध्यान दें कि यह कैसे आशीर्वाद 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 का पाठ है, और फिर एक गर्भवती विराम के साथ मध्यस्थ बीच में बोलते हुए कहता है कि किसी को भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वह क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता ही इस वाचा में शामिल होने और बने रहने की कीमत है। जैसा कि पौलुस रोमियो 11 में कहता है, रोमियो 11:17-22, परंतु यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई हों और तू जंगली जैतून होकर उसमें कलम लगाया गया और उनके साथ जैतून वृक्ष की झर के उत्तम रस का भागी हो गया हो, तो डालियाओं के प्रति अहंकार न कर, परंतु यदि तू अहंकार करे तो स्मरण रख कि तू झर को नहीं परंतु जर तुझे संभालती है। तो तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ डाली गई कि मैं उसमें कलम लगाया जाऊं। बिल्कुल ठीक, लेकिन इससे क्या, वे अपने अविश्वास के कारण तोड़ दी गई और तू केवल अपने विश्वास के कारण स्थिर है। इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि यदि परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियाओं को नहीं छोड़ा तो वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की दयालुता और कठोरता पर ध्यान दो, जिनका पतन हो गया उनके लिए कठोरता, परंतु तेरे लिए तो दया, यदि तू उसकी दया में बना रहे, अन्यथा तू भी काट डाला जाएगा। ध्यान दें कि मूसा की वाचा की तरह ही यहां भी नारा है, अगर आप खुद को बनाए रखते हैं उस दयालुता में, अन्यथा आप हम काट दिए जाएंगे।
मैं आशा करता हूं कि आप इसे लिखने के लिए समय निकालेंगे, इस पर विचार करेंगे तथा व्यवस्था विवरण 28 को साथ साथ दिखाएंगे। मत्ती 5:7, किसी ऐसे व्यक्ति का पक्ष लें जिसे आप जानते हैं, जो अभी भी सोचता है कि पुराना नियम मर चुका है और चला गया है, और या कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना अतीत की बात है और माना जाता है कि एक आस्तिक के जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है कि ईश्वर की लिखित आज्ञाओं का पालन करना व्यवस्थावाद है और इसलिए इसे प्लेग की तरह टाला जाना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति बहुत फिसलन भरी ढलान पर खड़ा है। अगले सप्ताह हम श्रापों की विस्तृत सूची पर विचार करना शुरू करेंगे जो व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का मुख्य भाग है।